युगऋषि की सूक्ष्मीकरण साधना। 1. हमारा निर्णय और परिजनों का असमंजस। 2. सूक्ष्मीकरण साधना के तथ्य एवं औचित्य। 3. प्रचंड सूक्ष्म शक्ति का जागरण। 4. टालना ही होगा तीसरा विश्वयुद्ध। 5. मूर्धन्यों को झकझोरने वाला भागीरथ पुरुषार्थ। 6. दार्शनिकों वैज्ञानिकों की दिशा बदलनी ही होगी। 7. ऋषि मनीषी के रूप में हमारी परोक्ष भूमिका। 8. युग परिवर्तन नियंता का सुनिश्चित आश्वासन। 9. सत्पात्रों को हमारे वर्चस्व का बल मिलेगा। 10. जागृत आत्माओं से भाव भरा आग्रह। पूर्व निवेदन। युगऋषि का व्यक्तित्व और कर्तृत्व गहरी शोध के विषय रहे हैं। उनकी विशेषताएं क्षमताएं जितनी अद्भुत रही उतनी ही अद्भुत रही है उनकी सहजता। उनके सान्निध्य में आने वाले व्यक्ति उनकी सहजता के प्रभाव में यह लगभग भूल ही जाते थे कि वे किसी अद्भुत अलौकिक क्षमता संपन्न व्यक्ति के पास बैठे हैं। वसंत पर्व सन 1984 से 1986 तक जनसामान्य की दृष्टि में वे केवल मौन एकांत साधना में रहे, किंतु वास्तव में वह साधना का एक युगांतरकारी अनोखा प्रयोग था। इस साधना प्रयोग को उन्होंने सूक्ष्मीकरण साधना कहा। पौराणिक काल से अब तक के इतिहास में ऐसे प्रयोग गिने चुने ही हुए होंगे। संभवतः महर्षि वशिष्ठ ने युगों के क्रम में परिवर्तन संशोधन के लिए अथवा महर्षि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग की रचना के लिए इस स्तर के प्रयोग किए हों। संभवतः भगवान महावीर एवं भगवान बुद्ध ने वेद और ईश्वर के नाम पर फैली विकृतियों के शमन तथा विवेक सम्मत नई परंपराओं को स्थापित करने के लिए इस स्तर के साधना पुरुषार्थ किए हों। युगऋषि ने अपने अवतरण का उद्देश्य नवयुग निर्माण की ईश्वरीय योजना को मूर्त रूप देना बताया है। नवयुग प्रज्ञायुग का स्वरूप क्या होगा यह तो दिव्य योजना के अनुसार निर्धारित है, किंतु वर्तमान विसंगतियों विनाशकारी विभीषिकाओं से मनुष्यता की रक्षा करके सतयुग जैसी गरिमा में मनः स्थितियों तथा परिस्थितियों के निर्माण के लिए किस प्रकार क्रमशः सुदृढ़ कदमों से लक्ष्य तक पहुंचा जाए यह रणनीति बनाने और सफलतापूर्वक लागू करने की जिम्मेदारी तो युगऋषि पर ही डाली गई। इसके लिए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से युग निर्माण योजना के दर्शन स्वरूप और कार्यक्रम को गति देने हेतु असाधारण पुरुषार्थ किया। प्रत्यक्ष कार्यक्रमों के लिए परोक्ष सूक्ष्म तंत्र को अनुकूल और समर्थ बनाने के लिए उन्होंने सूक्ष्मीकरण साधना की। ऐसी युगांतरकारी दिव्य योजनाओं के कुछ अनिवार्य अनुशासन होते हैं। केवल मानवीय पुरुषार्थ के बूते वे संभव नहीं होती। जैसे खेती के लिए किसान का पुरुषार्थ जरूरी तो होता है, परंतु अकेला वही काफी नहीं होता। मौसम की अनुकूलता भी तो उसके साथ जुड़नी ही चाहिए। युग की विनाशकारी विभीषिकाओं को निरस्त करना, युग निर्माण के पक्ष में सृजनशील प्रतिभाओं को जागृत प्रेरित करना तथा सूक्ष्म जगत में सृजन पुरुषार्थ को फलित करने योग्य अनुकूल प्रवाह उत्पन्न करने जैसे कार्यों के लिए उन्होंने सूक्ष्मीकरण साधना का अति विशिष्ट प्रयोग किया। विशिष्ट व्यक्तियों के सामने एक बड़ी कठिनाई सत्य को शालीनता के साथ प्रस्तुत करने की होती है। वे क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, इसे उनके अलावा कौन समझे। वे स्वयं अपने बारे में कहें तो शालीनता टूटती है, यदि न बताएं तो लोगों तक सत्य कैसे पहुंचे। इसलिए वे शालीनता पूर्वक हल्के से किंतु स्पष्ट संकेत भर कर देते हैं, शेष बात समझदारों पर छोड़ देते हैं। विज्ञ पाठकगण यदि ध्यान देंगे तो उन्हें अनुभव होगा कि प्रस्तुत लेखन चेतना के किस स्तर से उतर कर आया है। उन्होंने स्वयं अपनी कलम से अखंड ज्योति पत्रिका के जून 1984 से जून 1986 तक के अंकों में अपनी इस साधना से संबंधित विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला था। इस पुस्तक में उन्हीं को संकलित संपादित कर दिया गया है। युगऋषि द्वारा लिखी गई अपनी जीवनी हमारी वसीयत और विरासत से भी कुछ अनिवार्य अंशों को लिया गया है, अन्यथा सूक्ष्मीकरण प्रयोग की बात अधूरी रह जाती। उनके लेखन को ज्यों का त्यों एक प्रकार के टाइप में छापा गया है। ध्यानाकर्षण अथवा व्याख्या के लिए लिखी गई टिप्पणियां भिन्न टाइप में रखी गई हैं। आशा है विज्ञ पाठकगण इसे गंभीरता से पढ़ समझ कर उज्ज्वल भविष्य संरचना की दिव्य योजना को गति देने में अपना भी योगदान दे सकेंगे। ब्रह्मवर्चस। 1. हमारा निर्णय और परिजनों का असमंजस। महापुरुष शरीर में रहते हुए भी आत्मा भाव में प्रतिष्ठित रहते हैं। स्वयं को आत्मा रूप में कर्ता तथा शरीर को उपकरण भर मानते हैं। संत तुलसीदास जी ने भी मनुष्य शरीर को साधन धाम मोक्ष कर द्वार कहा है। आत्मा अपना कर्म कौशल इसी के माध्यम से प्रकट कर पाती है। अस्तु मोहग्रस्तों के लिए यह शरीर जीवात्मा के पतन का कारण बन जाता है, तो योग युक्तों के लिए वही अत्यंत उपयोगी साधन उपकरण बन जाता है। युगऋषि यहाँ इसी योग दृष्टि के अनुसार आत्मा एवं शरीर के शाश्वत संबंधों पर प्रकाश डाल रहे हैं। शरीर और आत्मा का चोली दामन जैसा साथ है। आत्मा को इसमें रहने का स्वेच्छा से आकर्षण होता है। इसलिए गर्भ निवास, मृत्यु कष्ट जैसी अनेकों यातनाएं सहते और आए दिन संघर्ष करने का कष्ट सहते हुए भी वह उसी में बार बार निवास करने के लिए मचलती है। कहने को जन्म मरण की व्यथा पर क्षोभ प्रकट करते हुए भी विज्ञजन इसी को धारण करने के लिए लौट पड़ते हैं। कितने ही जीवन मुक्त इसके लिए बाधित किए जाते हैं। भगवान के पार्षद सदा रिजर्व फोर्स के रूप में उनके समीप ही नहीं बैठे रहते, वरन समय की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए समय समय पर मार्गदर्शकों की भूमिका निभाने के लिए लौटते हैं। आत्मा अमर है, अदृश्य है, तो भी उसका परिचय इस शरीर से ही मिलता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण वह आत्मा को परम प्रिय है। उसे सजाने, सुविधाओं के अंबार लगाने में वह चूकता भी नहीं। यहाँ तक कि कुकर्मरत होकर भावी दुष्परिणामों को जानते हुए भी उसे संतोष देने, प्रसन्न करने के लिए वैसा ही कुछ करता है, जैसा कि स्नेह दुलार भरे अभिभावक अपने इकलौते बेटे की मनमर्जी हठधर्मी पूरी करने के लिए करते रहते हैं। संक्षेप में यही है शरीर और आत्मा का मध्यवर्ती संपर्क सूत्र और सघन सहयोग का सार संक्षेप। सैद्धांतिक रूप में आत्मा और काया के संबंधों का सार संक्षेप प्रस्तुत करने के बाद ऋषि स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करते हुए अपने तथा अपने शरीर के तालमेल पर प्रकाश डालते हैं तथा इस अनन्य सहयोगी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। अपने को भी यह शरीर लेकर जन्ना पड़ा और जो कुछ भी भला बुरा बन पड़ा है सो इसी के माध्यम से संपन्न किया है। इसे निरोग और दीर्घजीवी रखने के लिए ईमानदारी और सतर्कता के साथ प्रयत्न किया है। सदा इसे सृष्टा की अमानत माना और उसमें सन्निहित क्षमताओं को उभारते हुए श्रेष्ठतम सदुपयोग का ध्यान रखा है। आत्मोत्कर्ष और लोकमंगल के निमित्त जो प्रयास बन पड़े हैं उनके पीछे प्रेरणा तो चेतना में से ही उभरी है, पर श्रम तो शरीर को ही करना पड़ा है। इसलिए इस अनन्य सेवक और परम सहयोगी शरीर के प्रति हमारा घनिष्ठ मैत्री भाव है। इसके प्रति असीम स्नेह और सम्मान भी। इसे सार्थक और श्रेयाधिकारी बनाने के लिए कुछ उठा नहीं रखा है। जीवन को निरर्थक मानने, उसे भारभूत समझने की भूल कभी भी नहीं की। मलमूत्र की गठरी इसे कोई भी क्यों न कहता रहे, झंझटों से निपटने के लिए मरने की प्रतीक्षा अन्य कोई भले ही करता रहे, पर अपने मन में ऐसे विचार कभी भी नहीं उठे। न मरने की जल्दी पड़ी और न इसे भारभूत समझकर ऐसे ही खींचते खिजाते दिन गुजारे। समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करने की बात हर समय ध्यान में रही। सोचा जाता रहा कि सृष्टा की सर्वोत्तम कलाकृति का अनुदान मिला है तो इसी जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग क्यों न कर लिया जाए। गिनी हुई सांसें मिली हैं, इनका सदुपयोग करने में ही बुद्धिमानी है। जब बुद्धि मिल ही गई तो जीवन की हर इकाई का, हर सांस का श्रेष्ठतम प्रयोग करने में क्यों चूका जाए। यही चिंतन सिर पर सदा छाया रहा, फलतः समय कदाचित ही कभी निरर्थक गया हो। शरीर को नित्यकर्म और आवश्यक क्षणिक विश्राम के उपरांत कदाचित ही कभी खाली रहने दिया गया हो, इसका संतोष है। यूं जन्म कितने ही लिए हैं एवं अभी कितने ही और लेने पड़ेंगे, पर जहां तक स्मरण आता है इतने लंबे समय तक इतनी समझदारी के साथ अन्य शरीरों का इतना महत्वपूर्ण सदुपयोग नहीं बन पड़ा। ऐसी दशा में कृतज्ञता का तकाजा है कि मात्र रूखी रोटी खाकर उतना कठिन सेवा धर्म निभाने वाले का भरा पूरा एहसान माना जाए और उसे सदा सर्वदा साथ रखने और काम देने काम लेने के बहाने मैत्री धर्म का लंबे समय तक निर्वाह किया जाए। इस स्थिर विचारधारा के रहते हुए हमें इन दिनों कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जो उपर्युक्त प्रतिपादन से लगभग ठीक उल्टे पड़ते हैं। नए निर्धारणों के अनुसार अब इस शरीर का लोकोपयोगी प्रयोग घटते घटते समाप्त हो जाएगा और वह नित्य कर्म जैसे कुछ सीमित कार्यों में ही प्रयुक्त होता दिख पड़ेगा। लोकोपयोगी सेवा कार्यों में निरंतर संलग्न रहने का अभ्यस्त शरीर भविष्य में निष्क्रिय जैसी स्थिति में समय गुजारे, इसमें औरों को आश्चर्य और अपनों को असमंजस हो सकता है। इसमें समाज को उपयोगी सेवा कार्यों से वंचित होना पड़ेगा और जन कल्याण की दृष्टि से अभी बहुत कुछ करने की जो स्थिति थी उसमें कमी पड़ सकती है। कम से कम प्रत्यक्षतः तो स्पष्ट ही ऐसा दिखता है। अब तक जो बन पड़ा है शरीर से ही बना है। अस्तु, सहज ही यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में भी जब तक यह काम देगा पिछले दिनों जैसे ही महत्वपूर्ण काम करेगा। परिपक्वता बढ़ जाने के कारण यूं आशा तो और अधिक की जा सकती है। इतने उपयोगी शरीर तंत्र को इतने आड़े समय में इस प्रकार स्वेच्छापूर्वक जाम कर दिया जाए, यह सामान्य रीति से समझ में आने वाली बात नहीं है। ईश्वर इच्छा से तो कुछ भी हो सकता है। मरण सभी का निश्चित है, कभी कोई पक्षाघात आदि से भी असमर्थ हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संतोष कर लिया जाता और विधि का विधान समझकर किसी प्रकार मन समझा लिया जाता है। संसार चक्र ऐसा ही है जिसमें कभी किसी के बिना काम नहीं रुका। अवतार, ऋषि, देव, मानव इस धरती पर आए और बड़े महत्वपूर्ण कार्य करते रहे, पर जब चले गए तो कुछ समय तक ही उनका अभाव खटका। बाद में धर्रा अपने ढंग से चलने लगा। किसी के रहने न रहने से इतनी बड़ी दुनिया का गतिचक्र रुकता नहीं है, पर यह होता है विविशतापूर्वक। जाने वाले बुलाए गए हैं। अपने आप मैदान छोड़ने वालों को पलायनवादी कहा और धिक्कारा जाता है। मिलिट्री में तो ऐसे समर्थ सेवार्थों के भाग खड़े होने पर कोर्ट मार्शल तक होता है। यह बातें अपने ध्यान में न रही हों सो बात नहीं। फिर क्या कारण हुआ कि गतिविधियां जाम करने का निश्चय बन पड़ा? इस नए निश्चय में कई पक्षों की कई प्रकार की हानियां दृष्टिगोचर हो सकती हैं। तरह तरह के असमंजस। सर्वप्रथम अपने को, जिसने आजीवन एक से एक बढ़कर कठिन और महत्वपूर्ण काम करने की आदत डाली और प्रसन्नता अनुभव की हो, उसको समर्थ रहते निष्क्रिय होकर बैठना कितना कठिन पड़ेगा, कितना मन मारना पड़ेगा, इसे कोई भुक्तभोगी ही समझ सकता है। निष्क्रिय पड़े लोहे को जंग खा जाती है। प्रकृति के नियम सब पर एक समान लागू होते हैं। निथल्लापन चढ़ते ही हाथ पैर जकड़ सकते हैं, ऊब चढ़ सकती है, भारभूत जिंदगी जल्दी समाप्त हो सकती है। द्वितीय वर्ग वह आता है जो हमें लोकसेवक की दृष्टि से देखता है। उसे आघात लगेगा स्थूल दृष्टि से करनी और कथनी में अंतर देखकर अपने द्वारा हर किसी को युग धर्म निभाने के समय निकालने के उपदेश दिए जाते रहे हैं। लाखों ने उन्हें अपनाया भी है। तथाकथित भजनानंदी लोगों को कुटिया छोड़कर प्रव्रज्या पर निकल पड़ने की प्रेरणा मिली है। जिनके पास जो समय बचता है उसे जन कल्याण में लगाने का नया व्रत लिया है और उनको ऐसा उपदेश देने के उपरांत स्वयं एकांत सेवी बन जाना हर किसी को अटपटा लगेगा। सामने न सही पीठ पीछे तो लोग इसमें करनी और कथनी का अंतर देखेंगे ही और जो मन में है उसे प्रकट भी करेंगे। इस प्रकार प्रशंसा निंदा में बदलेगी। कहने वाले इसे समाज के साथ विश्वासघात भी कहेंगे। जिनके पास है और वे दे नहीं तो कृपण या निष्ठुर कहे जाते हैं, ऐसा लांछन अपने ऊपर भी तो लग सकता है। संचित प्रशंसा और प्रतिष्ठा पर इस कारण हड़ताल और फिर कालिक भी पुत सकती है। तीसरा वर्ग वह है कि जो कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ देता और साथ चलता रहा है। इस वर्ग में से जो अधिक साहसी हैं, वे प्रथम पंक्ति में आकर जीवनदानी बने हैं। शांतिकुंज, ब्रह्मचर्य एवं गायत्री तपोभूमि में आकर रह रहे हैं। संत और ब्राह्मण की जीवनचर्या जिनने अपनाई है। औसत भारतीय स्तर का निर्वाह और 12 घंटे जमकर काम करने का जिनने ऋषि मुनियों जैसा जीवनक्रम अपनाया है। फिर ऐसे परिवार बड़ी संख्या में हैं, जो हरिद्वार तो नहीं बुलाए गए पर अपने अपने कार्यक्षेत्रों में रहकर काम करने के लिए नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रज्ञापीठों का संचालन प्रायः ऐसे ही लोग कर रहे हैं। वरिष्ठ प्रज्ञापुत्रों की परिव्राजक की भूमिका निरंतर निभा रहे हैं। चौथा वर्ग समाज सेवा से जिनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, जो व्यक्तिगत जीवन तक सीमित हैं, जो पत्रिकाओं के साहित्य के माध्यम से प्रकाश प्राप्त करते रहते हैं, जो पत्र व्यवहार द्वारा गुत्थियों को सुझाने और सुखी समुन्नत बनने के लिए प्रकाश प्राप्त करते रहते हैं, उनकी संख्या भी कम नहीं है। जिनका सहज स्नेह है वे ऐसे ही जब मन में उमंग उठती है तब हरिद्वार अकारण भी दौड़ पड़ते हैं। तीर्थयात्रा पर्यटन के बहाने परिवार को लेकर हजारों लाखों हर वर्ष आते हैं। ठहरने की सुविधा शहर में होते हुए भी ढेरों मार्ग व्यय और आने जाने का झंझट उठाते हुए भी शांतिकुंज पहुंचते हैं, ठहरते हैं। इस समुदाय में हैरानियों से राहत पाने के इच्छुक ही नहीं, उत्साहवर्धक प्रगति पथ प्राप्त करने के उत्सुक ही नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिनका सहज स्नेह है। वह स्नेह ही उन्हें ढेरों पैसा और समय खर्च करके दर्शन करने का नाम लेकर एक बार नहीं बार बार आने को विवश करता है। इनकी सहज और सघन आत्मीयता सहज ही जानी और छलकती देखी जा सकती है। इस समुदाय को जब विदित होगा कि निष्क्रियता ही नहीं अपनाई गई, मिलजुल कर बोलना बात करना भी बंद कर दिया गया, तो निश्चित ही उन्हें चोट लगेगी। जो लोग हमें प्रेम बटोरने और लुटाने वाला मानते रहे हैं उन्हें नीरस निष्ठुर कहते भी देर न लगेगी। इसमें उनका कसूर भी नहीं है। जो आंखों के सामने प्रत्यक्ष देखा जा रहा है उसे झुठलाया भी कैसे जाए। हरिद्वार से शांतिकुंज जाने वाले तांगे रिक्शे वाले तक यह कहते सुने गए हैं कि गुरुजी अब समाधि ले रहे हैं, तो हरिद्वार के सबसे अधिक चहल पहल वाले आश्रम में भी सन्नाटा छा जाएगा। जब वे मिलेंगे दिखेंगे ही नहीं तो दर्शनार्थियों शिविरार्थियों की भीड़ क्यों आएगी? हमारी भी रोजी रोटी में कटौती होगी और आश्रम की शोभा महत्ता तो घट ही जाएगी। ईर्ष्यालुओं को भी अच्छा नहीं लग रहा है। वे तरह तरह की नुक्ताचीनी करते रहने का एक बहाना तो पा जाते थे, अब बहाना भी न रहेगा तो चूहलबाजों का एक प्रसंग भी हाथ से चला जाएगा। अब किसी और को भड़ास निकालने के लिए तलाशना पड़ेगा। पांचवां वर्ग अनेकों ने अध्यात्म की सजीव प्रतिमा के रूप में हमें समझा है और उस तत्वज्ञान को अपनाए जाने का वास्तविक स्वरूप क्या हो सकता है उसे समझने समझाने के लिए एक जीवंत उदाहरण सामने पाया है। साधना से सिद्धि के सिद्धांत पर जिन्हें अनेकों संदेह थे, जो फल श्रुतियों को प्रत्यक्ष की कसौटी पर खरा उतरते नहीं देखते थे, उन्हें रिद्धि सिद्धियों की बात कपोल कल्पना भर लगती थी, ऐसे निराश, उदास, दहखी, असंतुष्ट, अन्यमनस्क और अविश्वास की ओर चल पड़े लोगों में से अनेकों ने अपने विचार बदले हैं। प्रत्यक्ष परिणति देखकर उनके जगमगाते हुए पैर रुके हैं। अब जब वह प्रत्यक्ष प्रकाश भी बुझने जा रहा है, तो किसी दूसरे का कब किस प्रकार वह विश्वास और साहस प्राप्त कर सकेगा जो पिछले दिनों करता रहा है। सूक्ष्मीकरण साधना के दौरान युग ऋषि कायारूप में लोगों से मिलजुल नहीं रहे थे, लेकिन चेतना स्तर पर वे जनसामान्य से लेकर विशिष्ट सहयोगियों तक के मनों का अध्ययन कितनी गहराई से कर रहे थे, यह तथ्य यहाँ स्पष्ट होता है। यही नहीं, वे उन सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी भी अनुभव करते हैं और सहज संवेदना के नाते सबके समुचित समाधान का भी प्रयास करते हैं। ऐसे ऐसे अनेकों आक्षेप, असमंजस इस नए निर्णय से उठते हैं। विगत वसंत पर्व से यह नया निर्णय घोषित होने के उपरांत फरवरी, मार्च एवं अप्रैल के महीनों में जितने भी प्रज्ञा परिजन वसंत के सत्रों में अथवा सहानुभूतिविश शांतिकुंज आए हैं, उन सबके चेहरों पर इस असमंजस को उभरता देखा गया है। उचित समझा गया कि उसका निराकरण समय रहते कर दिया जाए। विपन्न मनोदशा में न स्वयं ही रहना चाहिए और न दूसरों को रहने देना चाहिए, यही उचित है। यह लेखमाला विशेष रूप से इसी निराकरण हेतु लिखी गई है। 2. सूक्ष्मीकरण साधना के तथ्य एवं औचित्य। निर्दोष और निर्भ्रांत तो केवल परमेश्वर है, पर सौभाग्य से अभी इस जीवन में ऐसे अवसर नहीं आए जिससे प्रतिपादित आदर्शों के विपरीत आचरण करने पड़े हों। आमतौर से लोग लोभ और मोहवशी कुमार्ग अपनाते और कुकृत्य करते हैं। इन दोनों में निरंतर कुश्ती होती रहती है। ऐसा दुर्दिन अभी नहीं आया जिससे वह हमें पछाड़ पाया हो। फिर जो एकांतवास जैसे कदम उठे हैं, उनमें कष्ट ही कष्ट और कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। बुढ़ापे की काया अब आराम चाहती और सहारा ताकती है। इसके स्थान पर सपरिश्रम आजीवन कारावास जैसी कठोर यातनाएं सहनी पड़े और ऊपर से पलायनवादी निष्ठुर होने का लांछन सहना हो, तो उसे अंगीकार करने में कोई वज्र मूर्ख ही तैयार हो सकता है। हमारी विवेक बुद्धि और औचित्य की दृष्टि में अभी राय रत्ती भर भी अंतर नहीं आया है, इसलिए यह सोचना उचित न होगा कि अकारण कोई सनक उठ खड़ी हुई है और वह किया जा रहा है जिसे प्रियजन नहीं चाहते। इस गुत्थी को सुझाने के लिए उन कारणों को समझना पड़ेगा जिससे प्रस्तुत कटु प्रयोग को अपनाने की मजबूरी लग गई। सूक्ष्मीकरण का अपना नया कदम यों लोकमंगल और उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपेक्षाकृत और भी अधिक महत्वपूर्ण है, फिर भी उसके संबंध में गहराई तक उतरकर सोच न पाने के कारण ऐसा प्रतीत हो सकता है कि निर्णय गलत हुआ। इससे हर किसी के लिए असुविधा उत्पन्न होगी और युगसंधि की इस ऐतिहासिक वेला में जो होना चाहिए था वैसा बन नहीं पड़ेगा, उल्टे अवरोध उत्पन्न होगा। आवश्यक समझा गया कि इसका समय रहते निराकरण करने का प्रयत्न किया जाए। उमड़ती विनाशकारी विभीषिकाएं। समय की विपन्नता दिन दिन बढ़ती जा रही है, इसमें संदेह नहीं। दृश्यमान और अदृश्य क्षेत्रों में सर्वनाशी विभीषिकाएं जिस क्रम में गहरा रही हैं, उसे देखते हुए कभी भी ऐसा अनिष्ट हो सकता है जिसके कारण पृथ्वी को ऐसे ही चूरे में बदलना पड़ा जैसा कि मंगल और बृहस्पति के बीच निरंतर एक अंधड़ की तरह घूमता रहता है। अणु आयुधों की, रासायनिक अस्त्रों की घातक किरणों की संख्या एवं विचित्रता इतनी बढ़ गई है कि उनके द्वारा बिना आमने सामने का युद्ध छिड़े भी ऐसा हो सकता है कि रात को अच्छे खासे सोए हुए आदमी मृतक या अर्ध मृतक जैसी स्थिति में मिलें। समर्थ राष्ट्र विनाश की क्षमता बढ़ाने में इस कदर लगे हैं और उस स्तर के पराक्रम को इस प्रकार प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहे हैं कि कदाचित पीछे कदम हटाने की हेठी कराने को कोई भी तैयार नहीं। मृत्यु के साधन जब चरम सीमा पर पहुंचेंगे तो कोई भी पगला इस बारूद के ढेर में एक तीली फेंककर उस प्रलय को क्षण भर में प्रत्यक्ष कर सकता है जिसके आने में पौराणिक प्रतिपादनों के अनुसार अभी लाखों वर्ष की देर है। महायुद्ध न भी हो तो भी वायु प्रदूषण, विकिरण, जनसंख्या विस्फोट, खनिज संपदा का समापन, पृथ्वी की उर्वरता का घटना, वृक्ष कटना, पशुओं का मिटना जैसे अनेक ऐसे कारण विद्यमान हैं जो शीतयुद्ध बनकर वही काम करें जो शहतीर में लगने वाला घुन धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से करता है। विषाणु कितने छोटे होते हैं किंतु वह अच्छे खासे पहलवान को क्षय, कैंसर जैसे रोगों से ग्रसित करके देखते देखते मौत के मुंह में धकेल देते हैं। कुविचारों और कुकर्मों से चरम सीमा तक पहुंच जाने पर अब मर्यादा और वर्जनाएं लगभग समाप्त होती जा रही हैं। उच्छृंखलता, उद्दंडता, अपराध, अनाचार अति की सीमा लांघ रहे हैं। छल प्रपंच कौशल के रूप में मान्यता प्राप्त कर चला है। परिवार बुरी तरह टूट और बिखर रहे हैं। चरित्र कहने सुनने भर की वस्तु रह गई है। आदर्शों का अस्तित्व इसलिए है कि वे कथन प्रवचन को लच्छेदार बनाने के काम आते हैं। लिखते समय भी उनका पुट लगाने की आवश्यकता पड़ती है। मूर्धन्यों ने इस विग्रह को अपने लिए तो अपनाया ही है, क्षुद्भियों को भी अनुगमन की प्रेरणा देकर वैसा ही अभ्यस्त कर दिया है। प्रचलन और आंदोलन उस दिशा में चल रहे हैं जिनका अंत सर्वनाशी परिणतियों के अतिरिक्त और कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। न व्यक्ति को चैन है, न समाज में शांति। पीढ़ियां अपने जन्मकाल से ही ऐसे दुर्गुण साथ लेकर जन्मती हैं कि अपना परिवार और समाज का सर्वनाश करके ही रहें, गर्म युद्ध से मरना पड़े या शीतयुद्ध से, अंतर कुछ नहीं पड़ता। सरदार जी का झटका, ठीक की कसाई का हलाल, अंतर क्या पड़े, बकरे की परिणति तो एक ही हुई। अपने इस जनसमुदाय का, इस विश्व उद्यान का विनाश तो होना ही ठहरा। लू में सुलझने पर या पाला मारने पर फसल का बंटाधार ही होना है। अविश्वास, आशंका, अनिश्चितता, असुरक्षा और आतंक के घुटन भरे वातावरण में मानवीय गरिमा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकती। भेड़िये और कुत्ते जब पागल होते हैं तो आपस में ही एक दूसरे को नोच खाते हैं। मनुष्य जब पागल होते हैं तो मरघट के भूत पिशाचों जैसे आचरण करते हैं। जलने और जलाने, डरने और डराने के अतिरिक्त और कुछ उन्हें सूझता ही नहीं। ऐसी दशा में व्यक्ति और समाज को पतन पराभव के किस गर्त में गिरना पड़ेगा, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। जो तथ्य सामने हैं वे किसी भी विचारशील का दिल दहलाने के लिए काफी हैं। यह कल्पनाएं, मान्यताएं या आकांक्षाएं नहीं, वरन ऐसी परिस्थितियां हैं जो दर्पण की तरह सामने हैं। उन्हें ज्योतिषियों, भविष्यवक्ताओं की अटकलें भी नहीं कहा जा सकता। प्रस्तुत तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर सकने में समर्थ राजनेता, अर्थशास्त्री, समाज विज्ञानी, विज्ञानवेता अपनी अपनी कसौटी पर कसकर एक स्तर से यही कहते पाए जाते हैं कि मनुष्य सामूहिक आत्महत्या की राह पर बदहवास होकर सर पर दौड़ता चला जा रहा है। कुछ समय बाद ही स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाएगी जिसमें पीछे लौट सकना भी संभव न रहेगा। वापसी की भी एक सीमा होती है, सुधार की गुंजाइश भी एक समय तक ही रहती है। वह निकल चले तो फिर पछताने के अतिरिक्त और कुछ हाथ रहता नहीं। हम निश्चित रूप से इन दिनों ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच रह रहे हैं। पौराणिक विवेचन के अनुसार इसे असुरता के हाथों देवत्व का पराभव होना कहा जा सकता है। कभी हिरण्याक्ष, हिरण्यक्षिपु, वृत्तासुर, भस्मासुर आदि ने आतंक उत्पन्न किए थे और देवताओं को खदेड़ दिया था। आलंकारिक रूप से किया गया वह वर्णन आज की परिस्थितियों के साथ पूरी तरह तालमेल खाता है। रावण और कंसकाल की परिस्थितियों के साथ आज के वातावरण की तुलना करते हैं तो पुनरावृत्ति स्पष्ट परिलक्षित होती है। उन दिनों शासक वर्ग का ही आतंक था, पर आज तो राजा रंक, धनी निर्धन, शिक्षित अशिक्षित, वक्ता श्रोता, सभी एक राह पर चल रहे हैं। छद्म और अनाचार ही सबका इष्टदेव बन चला है। नीति और मर्यादा का पक्ष दिनों दिन दुर्बल होता जाता है। उपाय दो ही हैं। एक यह कि शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके भवितव्यता के सामने सिर झुका दिया जाए, जो होना है उसे होने दिया जाए। दूसरा यह कि जो सामर्थ्य के अंतर्गत है उसे करने में कुछ उठाना रखा जाए। टिटहरी समुद्र से लड़कर अंडे वापस ले सकती है तो अपने से कुछ न बन पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो रहे प्रयास ना काफी। अनिष्ट का प्रतिकार करने के लिए हर कोई अपनी अपनी सूझबूझ और सामर्थ्य के अनुरूप काम करता है, पर स्थिर समाधान के लिए ताला खोलने वाली ताली ही तलाश करनी पड़ती है। लोग प्रयत्नशील न हो सो बात नहीं है। सरकारें धन खर्च करने, वैज्ञानिक दिन रात प्रयोगशालाओं में तत्पर रहने, अर्थशास्त्री संपन्नता बढ़ाने और विज्ञान सोचने खोजने में संलग्न है। संकट को निरस्त करने के लिए बरते जा रहे उपाय कुछ भी कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं। रस्सी दो गज जुड़ पाती नहीं कि चार गज टूट जाती है। अंधी पीसे कुत्ता खाया वाली उक्ति लागू हो रही है। राजनैतिक मोर्चे पर न धमकी काम दे रही है न कानाफूसी। विग्रह के बादल सघन ही होते चले जा रहे हैं। क्षेत्रीय समस्याओं में भाषावाद, संप्रदायवाद, उग्रवाद, यूनियनवाद, हड़ताल, तोड़फोड़ के उपद्रव आए दिन खड़े रहते हैं। अस्पतालों और डॉक्टरों की संख्या वृद्धि के साथ बीमारों और बीमारियों की संख्या और भी बड़े अनुपात के साथ बढ़ रही है। पुलिस बढ़ रही है पर अपराधों की वृद्धि पर तनिक भी अंकुश नहीं लग रहा है। महंगाई के साथ साथ मिलावट, भ्रष्टाचार का भी पूरा जोर और दौर है। नशेबाजी जैसे दुर्व्यसन, दहेज जैसे कुप्रचलन दिन दूने रात चौगुने वेग से उभर रहे हैं। प्रचार प्रस्तावों का उन पर कोई असर नहीं। व्यक्ति खोखला होता हुआ चला जा रहा है और समाज जर्जर। विपत्तियों और समस्याओं का और छोर नहीं। कुछ कुचक्री और स्वेच्छाचारी दोनों हाथों से दौलत भी बटोर रहे हैं, किंतु वे भी ईर्ष्यालुओं, अपराधियों और रिश्वत मांगने वालों से हैरान ही बने रहते हैं। खोटी कमाई इस हाथ आकर दुर्व्यसनों में उस हाथ फुलझड़ी की तरह जल जाती है। यह अत्युक्तिवादी कल्पना चित्र नहीं है। आंख उठाकर इर्द गिर्द देखने पर दृष्टिगोचर होने वाला वातावरण है। इसके प्रमाण परिचय कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं। चिंता की बात अनर्थों का संकटों का बढ़ना तो है ही, पर उससे भी अधिक हैरानी की बात यह है कि किसी क्षेत्र में कोई समाधान निकल नहीं रहे हैं। सुधारवादी प्रयास जलते तवे पर कुछ बूंदे पानी पड़ने की तरह अपने अस्तित्व का परिचय देकर समाप्त हो जाते हैं। सर्वोदय जैसे उत्साहवर्धक आंदोलन दम तोड़ गए। कुरीति निवारण में आर्य समाज को कितनी सफलता मिली। नशा निवारण और भ्रष्टाचार उन्मूलन के काम करने वाले संगठन कितने सफल हो रहे हैं, यह उन्हीं से उन्हीं के मुंह से कच्चा चिट्ठा पूछकर भली भांति जाना जा सकता है। धर्मोपदेशक और कथा कीर्तनकारों के बूते भी एक प्रकार का विनोद मनोरंजन ही बन पड़ता है। अनाथालयों, नारी ग्रहों, भिक्षुक ग्रहों, अपंग आश्रमों, गौशाला में कितनों को कितनी कितनी राहत मिली, इसका पर्यवेक्षण बताता है कि सारा आवा ही बिगड़ गया। पूरे कुएं में भांग पड़ गई। जो सुधार का जिम्मा उठाते हैं वे अधिकारी भी दूध के धुले कहाँ है। पक्षपात और भ्रष्टाचार को कहाँ प्रश्रय नहीं मिल रहा है। ऐसी दशा में हर विचारशील की आंखों के आगे अंधेरा छाता है और लगता है कि बुरे दिन तेजी से बढ़ते आ रहे हैं। रोकथाम करने वाले प्रयत्न दूसरों को उत्साह दिलाते हैं, पर स्वयं निराशा से ही ग्रसित रहते हैं। आशा की किरण। इस अंधकार भरी निविड़ निशा के बाद प्रभात के आशा की किरण यदि जीवित है तो वह एक ही है कि अदृश्य जगत से कोई सृजन प्रवाह उमंगे और वर्षा के बादलों की तरह तपते धरातल को शीतलता और हरितिमा से भर दे। ऐसे अवसरों पर दैवी चमत्कार ही काम आते हैं। हेमंत में जब शीताधिक्य से जंगलों के जंगल पत्ते रहित होकर ठूंठ बन जाते हैं, पाले के दबाव से पौधे मुस्कुराते और मृतक जैसे दिखते हैं, तब वसंत का मौसम ही उत्साहवर्धक परिवर्तन का माहौल बनाता है। यह कार्य कोई व्यक्ति या संगठन करना चाहे तो कठिन है। पतझड़ ग्रस्त पेड़ पौधों को पुष्प पल्लवों से लादने में मानवीय प्रयत्नों की पहुंच कहां तक हो सकती है। सूखी जमीन को हरा भरा बनाने में सिंचाई के प्रयत्न कितने क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। वर्षा और वसंत ही हैं जो हरितिमा उगाने और उसे फलने फूलने की स्थिति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। मानवीय पुरुषार्थ को यहां तो नगण्य नहीं ठहराया जा रहा है। कहा इतना ही जा रहा है कि बड़ी समस्याओं का समाधान, बड़े संकटों का निराकरण और बड़े अभावों की पूर्ति के लिए प्रायः दैवी अनुकूलता ही काम देती है। पहाड़ों पर बर्फ जमाना और उसे पिघलाकर नदियों को जलधारा से भरी पूरी रखना मानवीय पुरुषार्थ के बाहर की बात है। उसके द्वारा समुद्र के जल को बादल के रूप में परिणत करना और दूर तक बरसने के लिए खदेड़ देना भी संभव नहीं। सूर्य जैसा ताप और चंद्रमा जैसा शीत बरसाने में मनुष्य कहीं सफल हो सकेगा। उपग्रहों का निर्माण करने पर भी अभी नया ग्रह बना देना या पुरानों को हटा देना किसके लिए कब तक संभव हो सकेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इतिहास साक्षी है कि मनुष्य वातावरण को बिगाड़ने में तो अनेक बार सफल हुआ है, पर जब जब परिस्थितियां बेकाबू हुई हैं, तब तब नियमता ने ही उल्टे को उल्टकर सीधा किया है। पर यह दैवी अनुग्रह भी अनायास ही उपलब्ध नहीं होता, उसके पीछे भी ऋषिकृत देवताओं का दबाव काम करता है। जल के लिए सर्वत्र त्राही त्राही मची थी। आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त से लेकर मगध, बंगाल तक का इलाका प्यास से मर रहा था। उपयोगी उपाय गंगावतरण समझा गया। इसके लिए तपस्वी की प्रार्थना ही सुनी जा सकती थी। यह कार्य भागीरथ ने अपने जिम्मे लिया। उद्देश्य की पवित्रता को देखकर शिवजी सहायक बने और जाह्नवी स्वर्गलोक से धरती पर उतरी। अभाव दूर हो गया। ऐसे ऐसे असंख्यों उदाहरणों का इतिहास पुराणों में वर्णन है। दैवी अनुकंपा अंधविश्वास नहीं है। दैवी प्रकोपों का कुचक्र जब मानवीय प्रगति प्रयत्नों को मटियामेट कर सकता है तो दैवी अनुग्रह से अनुकूलता क्यों उत्पन्न न होगी। बाढ़, भूकंप, दुर्भिक्ष, महामारी, अतिवृष्टि, इति भीति आदि विनाशकारी घटनाक्रम दैवी प्रकोप से ही उत्पन्न होते हैं। उसी क्षेत्र की अनुकंपा से समृद्धि, प्रगति और शांति के अप्रत्याशित द्वार भी खुल सकते हैं। दैवी प्रकोप या अनुग्रह कारण नहीं बरसते। सृष्टि की सुव्यवस्था में व्यतिरेक उत्पन्न करने पर सुयोग संजोने में मनुष्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कुकृत्य ही अदृश्य वातावरण को दूषित करते और प्रकृति प्रकोपों को टूट पड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके साथ ही एक सुनिश्चित तथ्य यह भी है कि ऋषि स्तर के व्यक्ति जब उच्च प्रयोजनों के निमित्त तपश्चर्या करते और वातावरण में उपयोगी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो दैवी अनुकंपा का भी सुयोग बनता है। देवता न किसी पर कुपित होते हैं न दयालु। स्थिति का पर्यवेक्षण करते हुए वे तदनुरूप दंड पुरस्कार का तालमेल बिठाते रहते हैं। इस प्रकार दुरात्माओं का बाहुल्य संसार में विपत्ति बरसाने का सरंजाम जुटाता है। उसी प्रकार देव मानवों की तपश्चर्या प्रत्यक्ष और परोक्ष क्षेत्र के सुयोग जुटाती है। संत अपनी सेवा साधना में जहां धर्म धारणा और पुण्य प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं, वहां उनकी विशिष्ट साधनाओं से अदृश्य जगत का परिशोधन भी होता चलता है। यही कारण है कि अध्यात्मवेता लोक साधना और अध्यात्म साधना को समान महत्व देते हैं, दोनों के लिए समान प्रयत्न करते हैं। इन दिनों अदृश्य वातावरण की विषाक्तता ही अनेकानेक संकटों को जन्म दे रही है। विज्ञानवेताओं के अनुसार बढ़ते प्रदूषण और तापमान में ध्रुवीय बर्फ पिघलने, समुद्र उफिनने और हिमयुग लौट आने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। अदृश्य वेताओं के अनुसार दुर्भावनाओं, उद्दंडताओं और कुकर्मों ने देव जगत को रुष्ट कर दिया है और वे सामूहिक दंड व्यवस्था करके मनुष्य समुदाय को कड़ौवा पाठ पढ़ाने, करारे चपत लगाने के लिए आमादा हो गए हैं। प्रस्तुत समस्याओं का कारण चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से, उसमें अदृश्य जगत में संव्याप्त वातावरण की विषाक्तता प्रमुख कारण है। इसका समाधान भी उतने ही वजनदार पुरुषार्थ चाहता है जिससे खोदी हुई खाई पट सके और लगी हुई कलंक कालिमा धुल सके। समस्या भावनात्मक है। मनुष्य ने दुर्गति अपनाई और दुर्गति न्योत बुलाए है। इसके लिए परिमार्जन प्रयत्न ऐसे चाहिए कि जो प्रत्यक्ष रूप से लोकमानस का परिष्कार कर सकने वाले सत्प्रवृत्ति संवर्धन प्रयासों को अग्रगामी बना सकें, साथ ही अदृश्य जगत से देवत्व की शक्तियों की अनुकंपाएं भी अर्जित कर सकें। द्रौपदी की पुकार पर भगवान दौड़े आए थे। प्रहलाद का रुदन भगवान तक पहुंचा था। सशक्त आत्माओं का दबाव भगवान को भी बाधित कर सकता है। शबरी को दर्शन देने और यश बढ़ाने के लिए स्वयं ही भगवान पहुंचे थे। उदाहरणों में भक्त की पात्रता ही सब कुछ थी। उसी में दैवी अनुकंपा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। प्रस्तुत एकांतवास के नाम से समझा गया कदम वस्तुतः ऐसी विशिष्ट तपश्चर्या का एक स्वरूप है जो रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए उल्टे प्रवाह को उल्टकर सीधा करने के लिए उठाया गया है। 3. प्रचंड सूक्ष्म शक्ति का जागरण। विशेष समय, विशेष दायित्व। युग परिवर्तन की यह ऐतिहासिक वेला है। इन 20 वर्षों में हमें जमकर काम करने की ड्यूटी सौंपी गई है। सन 1980 से लेकर अब तक के 4 वर्षों में जो काम हुआ है वह पिछले 30 वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है। समय की आवश्यकता के अनुरूप तत्परता बरती गई है और खपत को ध्यान में रखते हुए तदनुरूप शक्ति उपार्जित की गई है। ये वर्ष कितनी जागरूकता, तन्मयता, एकाग्रता और पुरुषार्थ की चरम सीमा तक पहुंचकर व्यतीत करने पड़े हैं, उनका उल्लेख उचित न होगा, क्योंकि इस तत्परता का प्रतिफल 2400 प्रज्ञा पीठों और 7500 प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण के अतिरिक्त और कुछ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता। एक कड़ी हर दिन एक फोल्डर लिखने की इसमें और जोड़ी जा सकती है। शेष सब कुछ परोक्ष है। परोक्ष का प्रत्यक्ष लेखा जोखा किस प्रकार संभव हो, वे लिखते हैं कि विशेष समय में उन्हें विशेष ड्यूटी सौंपी गई है। ड्यूटी सौंपने वाली कौन है? इस संदर्भ में थियोसोफिकल सोसाइटी के विद्वानों का मानना है कि ऋषि तंत्र कुछ भी करने में समर्थ होता है, किंतु जब तक निर्देश नहीं मिलता वे अपने आप कुछ नहीं करते। स्पष्ट रूप से उन्हें निर्देश देने वाली सत्ता विश्व नियमता स्तर की ही हो सकती है। युग ऋषि ने अपनी वसीयत और विरासत तथा प्रज्ञोपनिषद में इस संदर्भ में संकेत किए हैं। निर्देश मिलने पर उनका पुरुषार्थ किस स्तर का होता है, यह भी झलक उनके लेखन में पाई जा सकती है। युग ऋषि के लेखन तथा उनके प्रभाव से कुछ ही वर्षों में हजारों पीठों प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण को लोग इतिहास की अद्भुत घटना कहते हैं, किंतु वे किए गए दिव्य पुरुषार्थ का एक छोटा सा प्रत्यक्ष अंश भर कहते हैं। सामान्य रूप से वे भी अपने कार्यों की उपमा समुद्र में तैरने वाले उन ग्लेशियरों, हिमखंडों से करते हैं जिनका केवल 1/10 भाग प्रत्यक्ष दिखाई देता है और शेष 9/10 भाग पानी में डूबा अप्रत्यक्ष रहता है। युगसंधि की वेला में अभी 16 वर्ष और रह जाते हैं। इस अवधि में गतिचक्र और भी तेजी से भ्रमण करेगा। एक ओर उसकी गति बढ़ानी होगी, दूसरी ओर रोकनी, विनाश को रोकने और विकास को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों ही गतियां इन दिनों मंथर हैं। इस हिसाब से सन 2000 तक उस लक्ष्य की उपलब्धि न हो सकेगी जो अभीष्ट है। इसलिए सृष्टि के प्रयास चक्र निश्चित रूप से तीव्र होंगे। उसमें हमारी भी गीत गिलहरी जैसी भूमिका है। काम कौन, कब, क्या, किस प्रकार करे, यह बात आगे की है। प्रश्न जिम्मेदारी का है। युद्धकाल में जो जिम्मेदारी सेनापति की होती है वही खाना पकाने वाले की भी। आपत्ति काल में उपेक्षा कोई भी नहीं बरत सकता। इस अवधि में एक साथ कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़नी होगी। समय ऐसे भी आते हैं जब खेत की फसल काटना, जानवरों को चारा लाना, बीमार लड़के का इलाज कराना, मुकदमे की तारीख पर हाजिर होना, घर आए मेहमान का स्वागत करना जैसे कई काम एक ही आदमी को एक ही समय पर करने होते हैं। युद्धकाल में तो यह बहुमुखी चिंतन एवं उत्तरदायित्व और भी अधिक सघन अथवा विरल हो जाता है। किस मोर्चे पर कितने सैनिक भेजना, जो लड़ रहे हैं उनके लिए गोला बारूद कम न पड़ने देना, रसद का प्रबंध रखना, अस्पताल का दुरुस्त होना, मरे हुए सैनिकों को ठिकाने लगाना, अगले मोर्चे के लिए खाया खोदना जैसे काम बहुमुखी होते हैं। सभी पर समान ध्यान देना होता है। एक में भी चूक होने से बात बिगड़ जाती है, करा धरा सब चौपट हो जाता है। स्थूल की सीमा। हमें अपनी प्रवृत्तियां बहुमुखी बढ़ा लेने के लिए कहा गया है। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई स्थूल शरीर का सीमा बंधन है। यह सीमित है, सीमित क्षेत्र में ही काम कर सकता है, सीमित ही वजन उठा सकता है। काम असीम क्षेत्र से संबंधित हैं और ऐसे हैं जिनमें एक साथ कितनों से ही वास्ता पड़ना चाहिए। यह कैसे बने? इसके लिए एक तरीका यह है कि स्थूल शरीर को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए और जो करना है उसे एक तरह या अनेक सूक्ष्म शरीरों से संपन्न करते रहा जाए। निर्देशक को यदि यही उचित लगेगा तो उसे निपटाने में पल भर की भी देर न लगेगी। स्थूल शरीरों का एक झंझट है कि उनके साथ कर्मफल के भोग विधान जुड़ जाते हैं। यदि लेन देन बाकी रहे तो अगले जन्म तक वह भार लदा चला जाता है और फिर खींचतान करता है। ऐसी दशा में उसके भोग भुगतते हुए जाने में निश्चिंतता रहती है। रामकृष्ण परमहंस ने आशीर्वाद वरदान बहुत दिए थे, उपार्जित पुण्य भंडार कम था। हिसाब चुकाने के लिए गले का कैंसर बुलाया गया, बेबाकी तब हुई। आद्य शंकराचार्य को भी भगंदर का फोड़ा ही जान लेकर गया था। महात्मा नारायण स्वामी को भी ऐसा ही रोग सहना पड़ा। गुरु गोलवलकर कैंसर से पीड़ित होकर स्वर्गवासी हुए। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी हैं जिनमें पुण्यात्माओं को अंतिम समय व्यथापूर्वक बिताना पड़ा। इसमें उनके पापों का दंड कारण नहीं होता, वह पुण्य व्यतिरेक की भरपाई करना होता है। वे कईयों का कष्ट अपने ऊपर लेते रहते हैं। बीच में चुका सके तो ठीक, अन्यथा अंतिम समय हिसाब किताब बराबर करते हैं ताकि आगे के लिए कोई झंझट शेष न रहे और जीवन मुक्ति की स्थिति बनी रहने में पीछे का कोई कर्मफल व्यवधान उत्पन्न न करे। सूक्ष्मीकरण की विशिष्ट साधना। मूल प्रश्न जीव सत्ता के सूक्ष्मीकरण का है। सूक्ष्म व्यापक होता है, बहुमुखी भी, एक ही समय में कई जगह काम कर सकता है, जबकि स्थूल के लिए एक स्थान एक सीमा के बंधन है। स्थूल शरीरधारी अपने भाग दौड़ क्षेत्र में काम करेगा, साथ ही भाषा ज्ञान के अनुरूप विचारों का आदान प्रदान कर सकेगा, किंतु सूक्ष्म में प्रवेश करने पर भाषा संबंधी झंझट दूर हो जाते हैं। विचारों का आदान प्रदान चल पड़ता है, विचार सीधे मस्तिष्क या अंतराल तक पहुंचाए जा सकते हैं, उनके लिए भाषा माध्यम आवश्यक नहीं है। यातायात की व्यवस्था भी स्थूल शरीरधारी को चाहिए। पैरों के सहारे तो वह घंटे में प्रायः 3 मील ही चल पाता है। वाहन जिस गति का होगा उसकी दौड़ भी उतनी ही रह जाएगी। एक व्यक्ति की एक जीभ होती है, उसका उच्चारण उसी से होगा, किंतु सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों का इस प्रकार का बंधन नहीं है। उनकी देखने की, सूंघने की, बोलने की सामर्थ्य स्थूल शरीर की तुलना में अनेक गुनी हो जाती है। एक ही शरीर समयानुसार अनेक शरीरों में भी प्रतिभासित हो सकता है। रास के समय श्री कृष्ण के अनेक शरीर गोपियों को अपने साथ सहनृत्य करते दिखते थे। कंसवध के समय तथा सिया स्वयंवर के समय उपस्थित जनसमुदाय को कृष्ण और राम की विभिन्न प्रकार की आकृतियां दृष्टिगोचर हुई थी। विराट रूप दर्शन में भगवान ने अर्जुन को, यशोदा को जो दर्शन कराया था वह उनके सूक्ष्म एवं कारण शरीर का ही आभास था। अलंकार काव्य के रूप में उनकी व्याख्या की जाती है, सो भी किसी सीमा तक ठीक ही है। युगऋषि अगले चरण में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि स्थूल शरीर की तरह सूक्ष्म शरीर भी हर व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है, किंतु उनकी सामर्थ्यों में बड़ा अंतर होता है। जैसे स्थूल शरीर में अपाहिजों से लेकर परम बलवान तक की अनेक श्रेणियां होती हैं, उसी तरह सूक्ष्म शरीर की सामर्थ्य की भी श्रेणियां होती हैं, जिन्हें विशिष्ट साधनाओं द्वारा ही विकसित किया जाना संभव है। यह स्थिति शरीर त्यागते ही हर किसी को उपलब्ध हो जाए, यह संभव नहीं। भूत प्रेत चले तो सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, पर वे बहुत ही अंगड़ स्थिति में रहते हैं। मात्र संबंधित लोगों को ही अपनी आवश्यकताएं बताने भर के कुछ दृश्य कठिनाई से दिखा सकते हैं। पितर स्तर की आत्माएं उनसे कहीं अधिक सक्षम होती हैं। उनका विवेक एवं व्यवहार कहीं अधिक उदात्त होता है। इसके लिए उनका सूक्ष्म शरीरों को उच्च स्तरीय क्षमता संपन्न बनाने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। वे तपस्वी स्तर के होते हैं। सामान्य काया को सिद्ध पुरुष स्तर की बनाने के लिए अनेक साधनाएं करनी पड़ती हैं। इससे अगला कदम सूक्ष्मीकरण का है। सिद्ध पुरुष अपनी काया की सीमा में रहकर जो दिव्य क्षमता अर्जित कर सकते हैं कर लेते हैं, उसी से दूसरों की सेवा सहायता करते हैं। किंतु सूक्ष्म शरीर विकसित कर लेने वाले उन सिद्धियों के भी धनी देखे गए हैं जिन्हें योग शास्त्र में अणिमा, महिमा, लघिमा आदि कहा गया है। शरीर का हल्का भारी, दृश्य अदृश्य हो जाना, यहाँ से वहां जा पहुंचना, प्रत्यक्ष शरीर के रहते हुए संभव नहीं, क्योंकि शरीरगत परमाणुओं की संरचना ही ऐसी नहीं है जो पदार्थ विज्ञान की सीमा मर्यादा से बाहर जा सके। कोई मनुष्य हवा में नहीं उड़ सकता और न पानी पर चल सकता है। यदि ऐसा कर सका होता तो उसने वैज्ञानिकों की चुनौती अवश्य स्वीकार की होती और प्रयोगशाला में जाकर विज्ञान के प्रतिपादनों में एक नया अध्याय अवश्य ही जोड़ा होता। किंवदंतियों के आधार पर कोई किसी से इस स्तर की सिद्धियों का बखान करने भी लगे तो उसे अत्युक्ति ही माना जाएगा। अप्रत्यक्ष को प्रमाणित किए बिना किसी की गति नहीं, प्रश्न सूक्ष्मीकरण का है। यह एक विशेष साधना है जो स्थूल शरीर में रहते हुए भी की जा सकती है और उसे त्यागने के उपरांत भी करनी पड़ती है। दोनों ही परिस्थितियों में यह स्थिति बिना अतिरिक्त प्रयोग पुरुषार्थ के तप साधना के संभव नहीं हो सकती। इसे योगाभ्यास तपश्चर्या का अगला चरण कहना चाहिए। इसके लिए किसे क्या करना होगा, यह उसके वर्तमान स्तर एवं उच्च स्तरीय मार्गदर्शन पर निर्भर है। सबके लिए एक पाठ्यक्रम नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य है कि अपनी शक्तियों का बहिरंग अपव्यय रोकना पड़ता है। अंडा जब तक पक नहीं जाता तब तक एक खोखले में बंद रहता है। इसके बाद वह इस छिलके को तोड़कर चलने फिरने और दौड़ने उड़ने लगता है। लगभग यही अभ्यास सूक्ष्मीकरण के हैं। प्राचीन काल में गुफा सेवन, समाधि आदि का प्रयोग प्रायः इसी निमित्त होता था। यह परंपरा पुरातन है। सूक्ष्म शरीरधारियों का वर्णन और विवरण पुरातन ग्रंथों में विस्तार पूर्वक मिलता है। यक्ष और युधिष्ठिर के मध्य विग्रह तथा विवाद का महाभारत में विस्तार पूर्वक वर्णन है। यक्ष, गंधर्व, ब्रह्मराक्षस जैसे कई वर्ग सूक्ष्म शरीरधारियों के थे। विक्रमादित्य के साथ पांच वीर रहते थे। शिवजी के गण वीरभद्र कहलाते थे। भूत, प्रेत, जिन, मसानों की एक अलग ही बिरादरी थी। अलादीन का चिराग जिन ने पढ़ा है, उन्हें इस समुदाय की गतिविधियों की जानकारी होगी। छाया पुरुष साधना में अपने निज के शरीर से ही एक अतिरिक्त सत्ता गढ़ ली जाती है और वह एक समर्थ अदृश्य साथी सहयोगी जैसा काम करती है। इन सूक्ष्म शरीरधारियों में अधिकांश का उल्लेख हानिकर या नैतिक दृष्टि से हेय स्तर पर हुआ है। संभव है उन दिनों अतृप्त विक्षुब्ध स्तर के योद्धा रणभूमि में मरने के उपरांत ऐसे ही कुछ हो जाते रहे हों। उन दिनों युद्ध की मार काट ही सर्वत्र समव्याप्त थी, पर साथ ही सूक्ष्म शरीरधारी देवर्षियों का भी कम उल्लेख नहीं है। राजर्षि और ब्रह्मर्षि तो स्थूल शरीरधारी ही होते थे, पर जिनकी गति सूक्ष्म शरीर में काम करती थी वे देवर्षि कहलाते थे। वे वायुभूत होकर विचरण करते थे, लोक लोकांतरों में जा सकते थे, जहां आवश्यकता अनुभव करते थे वहां भक्तजनों का मार्गदर्शन करने के लिए अनायास ही जा पहुंचते थे। ऋषियों में से अन्य कईयों के भी उल्लेख मिलते हैं। वे समय समय पर धैर्य देने, मार्गदर्शन करने या जहां आवश्यकता समझी है वहां पहुंचे हैं, प्रकट हुए हैं। पैरों से चलकर उन्हें जाना नहीं पड़ा है। अभी भी हिमालय के कई यात्री ऐसा विवरण सुनाते हैं कि राह भटक जाने पर कोई उन्हें साथ ले गया और उपयुक्त स्थल तक छोड़कर चला गया। कईयों ने किन्हीं गुफाओं में शिखरों पर अदृश्य योगियों को दृश्य तथा दृश्य को अदृश्य होते देखा है। तिब्बत के लामाओं से ऐसी कितनी ही कथा गाथाएं सुनी गई हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की मान्यता है कि अभी भी हिमालय के ध्रुव केंद्र पर एक ऐसी मंडली है कि जो विश्व शांति में योगदान करती है। इसे उन्होंने अदृश्य सहायक का नाम दिया है। यहाँ स्मरण रखने योग्य बात यह है कि यह देवर्षि समुदाय भी मनुष्यों का ही एक विकसित वर्ग है। योगियों, सिद्ध पुरुषों और महामानवों की तरह वह सेवा सहायता में दूसरों की अपेक्षा अधिक समर्थ पाया जाता है। पर यह मान बैठना गलती होगी कि वे सर्व समर्थ हैं और किसी की भी मनोकामना को तत्काल पूरी कर सकते हैं या अमोघ वरदान दे सकते हैं। कर्मफल की वरिष्ठता सर्वोपरि है, उसे भगवान ही घटा या मिटा सकते हैं। मनुष्य की सामर्थ्य से वह बाहर है। जिस प्रकार बीमार की चिकित्सक विपत्तिग्रस्त की धनी सहायता कर सकता है, ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म शरीरधारी देवर्षि भी समय समय पर सत्कर्मों के निमित्त बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसमें बहुत लाभ भी मिलता है। इतने पर भी किसी को यह नहीं मान बैठना चाहिए कि पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं रही या उनके आड़े आते ही निश्चित सफलता मिल गई। यदि ऐसा रहा होता तो लोग उन्हीं का आसरा लेकर निश्चिंत हो जाते और फिर निजी पुरुषार्थ की आवश्यकता न समझते। निजी कर्मफल आड़े आने परिस्थितियों के बाधक होने की बात को ध्यान में ही न रखते। यहाँ एक अच्छा उदाहरण हमारे हिमालयवासी गुरुदेव का है। सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ही वे उस प्रकार के वातावरण में रह पाते हैं जहाँ जीवन निर्वाह के कोई साधन नहीं है। समय समय पर हमारा मार्गदर्शन और सहायता करते रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, कोई कठिनाई मार्ग में आई ही नहीं, कभी असफलता मिली ही नहीं। यह भी होता रहा है, पर निश्चित है कि हम एकाकी जो कर सकते थे उसकी अपेक्षा उस दिव्य सहयोग से मनोबल बहुत बड़ा चढ़ा रहा है। उचित मार्गदर्शन मिला है। कठिनाई के दिनों में धैर्य और साहस यथावत स्थिर रहा है। यह कम नहीं है, इतनी ही आशा दूसरों से करनी भी चाहिए। सब काम करके कोई और रख जाएगा, ऐसी आशा तो भगवान से भी नहीं करनी चाहिए। युगऋषि के हिमालयवासी गुरुदेव का यहाँ संकेत भर किया गया है। उनके बारे में तथा ऋषि तक से युगऋषि के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंधों के बारे में जानने के लिए युगऋषि की जीवनी, हमारी वसीयत और विरासत पढ़ी जा सकती है। भूल यही होती रही कि दैवी सहायता का नाम लेते ही लोग समझते हैं कि वह जादू की छड़ी घूमी और मनचाहा काम बन गया। ऐसे ही अतिवादी लोग क्षण भर में आस्था खो बैठते देखे गए हैं। दैवी शक्तियों से, सूक्ष्म शरीरों से हमें सामाजिक सहायता की आशा करनी चाहिए, साथ ही अपनी जिम्मेदारियां स्वतः वहन करने के लिए कटिबद्ध भी रहना चाहिए। असफलताओं तथा कठिनाइयों को अच्छा शिक्षक मानकर अपने कदम अधिक सावधानी के, अधिक बहादुरी के उठाने की तैयारी करनी चाहिए। सूक्ष्म शरीर की शक्ति सामान्यतः भी अधिक होती है। दूरदर्शन, दूरश्रवण, पूर्वाभास, विचार संप्रेषण आदि में प्रायः सूक्ष्म शरीरों की ही भूमिका रहती है। उनकी सहायता से कितनों को ही विपत्तियों से उबरने का अवसर मिला है। कईयों को ऐसी सहायताएं मिली हैं जिनके बिना उनका कार्य रुका ही पड़ा रहता। दो सच्चे मित्र मिलने से लोगों की हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है। वैसा ही अनुभव अदृश्य सहायकों के साथ संबंध जुड़ने से भी करना चाहिए, जिस प्रकार अपना दृश्य संसार है और उसमें दृश्य शरीर वाले जीवधारी रहते हैं, ठीक उसी प्रकार उससे जुड़ा हुआ एक अदृश्य लोक भी है, उसमें सूक्ष्म शरीरधारी निवास करते हैं। इनमें कुछ बिल्कुल साधारण, कुछ दुरात्मा और कुछ अत्यंत उच्च स्तर के होते हैं। वे मनुष्य शोक में समुचित दिलचस्पी लेते हैं, बिगड़ों को सुधारने और सुधरों को अधिक सफल बनाने में यथोचित सहायता करते रहते हैं। फिर सहयोग मांगने का प्रयोजन और मांगने वाले का स्तर उपयुक्त होने पर तो वह सहायता अच्छी तरह और भी बड़ी मात्रा में मिलती है। हमें भी यही करना है। यह सूक्ष्म शरीर की, सूक्ष्म लोक की सामान्य चर्चा हुई। प्रसंग अपने आप का है। यह विषम वेला है। इसमें प्रत्यक्ष शरीर वाले प्रत्यक्ष उपाय उपचारों से जो कर सकते हैं सो तो कर ही रहे हैं, करना भी चाहिए, पर दिखता है कि उतने भर से काम चलेगा नहीं। सशक्त सूक्ष्म शरीरों को बिगड़ों को अधिक न बिगड़ने देने के लिए अपना जोर लगाना पड़ेगा। संभालने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है वह पर्याप्त न होगी, उसे और भी अधिक सरल सफल बनाने के लिए अदृश्य सहायता की भी आवश्यकता पड़ेगी। यह सामूहिक समस्याओं के लिए भी आवश्यक होगा और व्यक्तिगत रूप से सत्प्रयोजनों में संलग्न व्यक्तित्वों को अग्रगामी यशस्वी बनाने की दृष्टि से भी उचित होगा। हमें यह काम सौंपा गया है तो उसे करने में आनाकानी कैसी। दिव्य सत्ता के संकेतों पर चिरकाल से चलते आ रहे हैं और जब तक आत्मबोध जागृत रहेगा तब तक यही स्थिति बनी रहेगी, यही गतिविधि चलेगी। यह विषम वेला है। इन दिनों दृश्य और अदृश्य क्षेत्र में जो विषाक्तता भरी हुई है उसका परिशोधन प्रयास अविलंब आवश्यक हो गया है, तो संजीवनी बूटी लाने के लिए, पर्वत उखाड़ लाने और सुषेण वैद्य की खोज में जाने के लिए जो भी करना पड़े करना ही चाहिए। यह कार्य स्थूल शरीर से बनता न देखकर सूक्ष्म शरीर को प्रसुप्त से जागृत स्थिति में लाने के लिए हमें अविलंब जुटना पड़ रहा है। 4. टालना ही होगा तीसरा विश्वयुद्ध। इन दिनों हमने अनेकानेक ऐसी गुत्थियां गूंथ ली हैं जिनका इतिहास में कोई प्रमाण उदाहरण नहीं मिलता। लगभग सभी मौलिक हैं, भले ही उनका आधारभूत कारण एक ही हो। उनके समाधान के लिए मौलिक सूझबूझ और मौलिक साहस की जरूरत पड़ेगी। पुरातन उदाहरण और समाधान इस संदर्भ में अधिक काम न आ सकेंगे। प्रस्तुत गुत्थियों में से एक एक करके इस क्रम से विचार करें कि कौन अधिक भयावह है और किसकी प्रतिक्रिया अधिक विनाशकारी हो सकती है। इस क्रम में संभावित तृतीय विश्वयुद्ध की समस्या सबसे बड़ी है। पिछले दो युद्धों में अपने अपने ढंग के विशेष आयुधों का विकास हुआ था। इस बार अणुशक्ति सबसे आगे है। अणु बमों, उज्जन हाइड्रोजन बमों की चर्चा अत्यधिक होती है। यूं उन्हीं के समानांतर रासायनिक बम भी कम घातक नहीं हैं और इतनी अधिक संख्या में बन चुके हैं कि इनके प्रहार होने की संभावना निरंतर सामने रहती है। उनकी घातकता के संबंध में कहा जाता है कि एक बम से न्यूयॉर्क, मॉस्को, इंग्लैंड, पेरिस आदि में से किसी का भी कुछ ही सेकंडों में सफाया हो सकता है। यदि वे लगातार एक मिनट तक चलते रहें तो फिर संसार का एक भी महत्वपूर्ण नगर जीवित न बचेगा। इसके अतिरिक्त इनके कारण जो विषाक्तता फैलेगी उसके कारण छोटे देहातों तक भी जीवन सुरक्षित न रहेगा। हवा, पानी और खाद्य में इतना विष घुल जाएगा कि उसका आश्रय लेने वाले किसी की भी खैर न रहेगी। यदि यह बम कुछ और अधिक मात्रा में चलते रहे तो तो पृथ्वी खंड विखंड होकर उस चूरे के रूप में अंतरिक्ष में उड़ने लगेगी, जैसा कि मंगल और बृहस्पति के बीच में अभी कोई कचरा चक्कर काटता रहता है। पिछले युद्धों में आमने सामने लड़ने वालों की शामत आती थी, छावनियों और राहगीरों पर ही बम बरसते थे, अधिकांश युद्धार्थी मरते थे। अब की बार सीमा बंधन भी समाप्त हुआ। परमाणु बमों, रासायनिक बमों की लपेट में ऐसे वनवासी आ सकते हैं जिन्हें युद्ध से कुछ भी लेना देना नहीं। विषाक्त हवा और विकिरण की चपेट से कोई भी कहीं भी रहने वाला सुरक्षित नहीं। ऐसी दशा में समस्त संसार को युद्ध भूमि में खड़ा हुआ माना जा सकता है। इसमें लड़ने वाले, न लड़ने वाले, बाल वृद्ध, मोर्चे से सैकड़ों मील दूर रहने वालों में से भी किसी की खैर नहीं। इस प्रकार इन पंक्तियों के पाठकों में से भी प्रत्येक के लिए उतना ही बड़ा संकट विद्यमान है जितना कि अणु बम बनाने या चलाने वालों के लिए होता है। इसकी चपेट में पृथ्वी के मानवेतर प्राणी भी आते हैं और वृक्ष वनस्पतियों का, जलाशयों का जीवन समाप्त हो जाने की भी पूरी पूरी आशंका है। इतने बड़े पैमाने पर कोई बचाव का प्रबंध भी संभव नहीं। ढाल छो होती है और वह शत्रु के प्रहार से मात्र सीने और सिर का कुछ भाग बचा सकती है, शेष अंग शत्रु की पकड़ से नहीं बचते। इस प्रकार अणु बमों की मार से खाई खंदकों में बचाव छतरियों में कुछ सौ या हजार को बचा भी लिया जाए तो भी उससे क्या बनेगा। निकलने के बाद भी उन्हें उसी विषाक्त संसार में सांस लेनी पड़ेगी। इतने भर से उनका भी सफाया हो जाएगा। स्थिति की भयंकरता। आज का यह संकट सबसे बड़ा है। भले ही वह प्रत्यक्ष आंखों के सामने खड़ा दिखता हो और तत्काल अपनी भयंकरता के प्रमाण प्रस्तुत न करता हो, तो भी यह निश्चित है कि किसी का भी जीवन या भविष्य सुरक्षित नहीं। कोई ऐसा अधपगला स्टोकी पर इस बारूद के भंडार में एक तीली फेंककर बटन दबाकर वह दृश्य उपस्थित कर सकता है जिसकी चर्चा इन पंक्तियों में की जा रही है। एक ओर आक्रमण हो और दूसरा चुप बैठा रहे, यह भी नहीं हो सकता। प्रश्न हल्के भारी आक्रमण का नहीं, उसका थोड़ा सा प्रयोग भी सर्वनाश कर सकता है। उससे न शत्रु पक्ष के लोग बचने वाले हैं और न मित्र पक्ष के। पिछले युद्धों में यह कठिनाई नहीं थी, उसमें प्रतिपक्षियों को मारने का ही ताना बाना बुना जाता था, पर इसमें तो वैसा भेद भी नहीं हो सकता। वायु किसी क्षेत्र में सीमित नहीं रहती। विकिरण फैलने पर उसकी परिणति समस्त क्षेत्र को ही सहनी पड़ती है, भले ही उसमें मित्र समुदाय ही क्यों न रहता हो। समस्त विश्व के प्रत्येक घटक को अपनी विभीषिका परिधि में चपेटे हुए इस अणु युद्ध की संभावना को आज की महती समस्या माना जा सकता है, एवं सर्व प्रमुख महत्व की भी। कुछ दिन पूर्व तक यह जखीरे रूस, अमेरिका के पास ही थे, पर अब वे फ्रांस, ब्रिटेन, चीन आदि के पास भी हैं। इसलिए कौन कब क्या कर बैठे, इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस विस्तार से गुत्थी उलझी ही है। समाधान सोचने से पूर्व इस संकट के उत्पन्न होने और बढ़ने के कारणों पर तनिक विचार कर लें तो ठीक होगा। हिटलर हारा तो उसकी पोटली में से अणु बम का नुस्खा निकल आया। अमेरिका ने उसे विकसित किया और जापान के विरुद्ध उसका छोटा उपयोग भी कर लिया। जापान इस बड़े आघात के लिए तैयार न था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। बात यहीं से आरंभ होती है। हर वरिष्ठ राष्ट्र के मुंह में पानी भर आया कि वह भी अपने प्रतिपक्षियों के विरुद्ध यही चाल चल सकता है और उसे देखते देखते नीचे दबा सकता है। जो कर सकते थे उनने यह होड़ आरंभ कर दी और रूस एवं अमेरिका इस निर्माण में औरों से आगे निकल गए। अब प्रमुख प्रतिद्वंद्विता इन्हीं दो के बीच चल रही है। इन्हीं के दो खेमे अब बन गए हैं। समाधान आसान नहीं है। असमंजस इस बात का है कि न आगे बढ़ते बन पड़ रहा है, न पीछे हटते। आगे बढ़ते चलने में अनेक समस्याएं सामने हैं। जितने बन चुके वे प्रतिपक्षी को ही नहीं, समस्त संसार को धूल में मिला देने के लिए पर्याप्त हैं। फिर और अधिक बनाकर उनका क्या किया जाए। इतने पर भी यह प्रश्न सामने है कि इस कार्य में जितने कारखाने, जितने वैज्ञानिक लगे हुए हैं, उनका क्या हो। फिर शत्रु ने कोई और भी बड़ा आयुध निकाल लिया तो पिछड़ जाने का जोखिम कौन मोल ले। बंद करने पर दूसरा पक्ष जारी रखे रहा तो अन्य प्रकार का ऐसा आयुध ढूंढ निकाला जा सकता है जिसमें अब तक निर्माण छोटा साबित हो। ऐसी दशा में प्रतिद्वंद्वियों का आतंक और पिछड़ जाने का भय दोनों ही ऐसे हैं जो हाथ रोकने की सलाह नहीं देते। जारी रखने में यह प्रश्न है कि अब तक जो बन चुका उसका क्या होगा। इस कार्य पर जो असाधारण लागत लग रही है वह कब तक लगती रहेगी। फिर प्रयोग में 10-5 आयुध ही आने के उपरांत जो बचेंगे उन्हें कहाँ रखा जाएगा। वे विकिरण फैलाते हैं और अंत में कहीं न समापन के लिए जगह मांगते हैं। इन भट्ठियों में से निकली हुई राख कितनी भयानक होती है यह भी किसी से छिपा नहीं है। निर्माण जारी रखने पर न केवल विनिर्मित निर्माण का वरन राख का भी सवाल है, जो उससे अधिक पेचीदा है। इन कारणों को देखते हुए लाभ इसमें है कि जापान जैसा प्रयोग कोई एक किसी दूसरे के विरुद्ध कर ले और तत्काल लाभ उठा ले, पर ऐसा कर सकना वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं रहा। जापान के पास बदला लेने के साधन नहीं थे, पर आज तो कोई भी बदला ले सकता है। चीन, ईरान और इजराइल जैसे वैज्ञानिक प्रगति में पिछड़े समझे जाने वाले देश भी बदला लेने की स्थिति में हैं। फिर कोई किसी की सहायता पर भी तो आ सकता है। यही है वह असमंजस जिसके कारण प्रहार करने की हिम्मत भी नहीं पड़ती और पीछे हटने की जोखिम भी उठाए नहीं उठती। इस निर्माण कार्य में जो कारखाने और वैज्ञानिक विपुल पूंजी अपने पेट में समाये बैठे हैं, उस सबका क्या हो? आक्रमण से पूर्व बचाव का प्रश्न और अहम है। अपनी ओर से हाथ खींचे तो सामने वाला भी वैसा करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। जारी रखा जाए तो कैसे, कब तक, अभी कितनी और पूंजी इस गोर्ख धंधे में लगानी पड़ेगी, वह आएगी कहां से? आत्मरक्षा को महत्व देने वाली समर नीति समझौतों की चर्चा की इजाजत नहीं देती। पुरानी बात अलग थी, जबान बान ही सब कुछ थी। अब मूंछे मरोड़ने और तत्काल उन्हें नीची कर लेने में किसी को संकोच नहीं लगता। ऐसी दशा में पहल होना भी कठिन है और हाथ रुकना भी उससे कठिन। क्रम यही चलता रहा तो इस जखीरे का, उस कचरे कूड़े का, उसमें लगे साधनों का क्या होगा? ये प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर सरल नहीं हैं। जापान का उदाहरण देखकर जो कल्पनाएं की गई थी वे हजारों मील दूर गईं। कोई भी राज हड़पना चाहता हो सो बात भी नहीं है। कभी प्रजातंत्र और साम्यवाद का नशा जोरों पर था, अपने मत का संसार बना लेने की झक कभी थी, इसलिए जिहाद बोल देने का भी जोश था। अब वह ठंडा पड़ गया। अब प्रजातंत्र, राजतंत्र, साम्यवाद की मिली जुली खिचड़ी पक रही है और सभी के मस्तिष्क राष्ट्रवादी संकीर्णता पर आकर अवरुद्ध हो गए हैं। अपने यहाँ कोई किसी सिद्धांत का पालन करे तो दूसरे देशों में उसे चलना ही चाहिए, इसका किसी को आग्रह नहीं। ऐसी दशा में शासन पद्धति अपने हिसाब से बनाने के लिए कोई बाहरी देशों में जाकर युद्ध जैसी जोखिम उठाने को तैयार नहीं। शीत युद्ध में गुपचुप सहायता इस या उस पक्ष की करता रहे, यह बात दूसरी है। यह समस्त परिस्थितियां यह बताती हैं कि न महायुद्ध छेड़ना सरल है, न उससे हाथ खींचना। स्थिति को यथावत बनाए रखना इतना खर्चीला है कि वह भी लंबे समय तक इसी प्रकार चलते रहने नहीं दिया जा सकता। आखिरकार देने वाले भी इतना बोझ कब तक वहन करेंगे? जापान पर हमले के दिनों में सभी को वह प्रक्रिया बहुत लाभदायक लगी थी, पर अब वैसी बात नहीं रही। सभी पक्ष पीछे हटना चाहते हैं। जो अपने हाथ हैं, उसे बचाए रखने में ही खुशी देखते हैं। आक्रमण का जोश ठंडा पड़ता जाता है, पर प्रतिपक्ष के प्रति अविश्वास और भय का भाव इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि कोई निर्णय करते नहीं बन पड़ता। अब वायदों का कोई भी तो मूल्य नहीं रह गया है। समाधान की दिशाधारा, यह स्थिति का विश्लेषण हुआ। समाधान एक ही है कि पैर पीछे हटाना और हाथ समेटना पड़ेगा। इसके लिए भय, आशंका और आतंक, इन तीनों का सामना करना पड़ेगा। एक पक्ष को जोखिम उठानी पड़ेगी। दोनों पक्ष सहमत हो जाए तब कहीं राजीनामा हो, यह कठिन है। फिर वही राजीनामा चलेगा, इसकी क्या गारंटी है? यहाँ ऐसा आत्मबल उत्पन्न होने की आवश्यकता है जो यह सोचने पर विवश कर दे कि युद्ध में नष्ट होने की अपेक्षा शांति के लिए पहल करने में जो जोखिम है उसे उठाया जाए। गांधी जी ने यही कर दिखाया था। अंग्रेजों की शक्ति असीम थी, वे सशस्त्र थे, दमन के द्वारा वे कुछ भी कर सकते थे, पर भयभीत रहकर कुछ न करने की अपेक्षा संकट मोल लेना और आपत्ति को चुनौती देना उन्होंने अंगीकार किया। लड़ाई बराबर की नहीं थी तो भी वह जीती गई और यह अनुभव किया गया कि नैतिकता का अपना पक्ष है, उसका अपना बल है। वह जिस पलड़े में भारी पड़े उसके पराजित होने की संभावना कम रहती है, पर पराजय मिलेगी तो भी युद्ध विनाश की तुलना में कम ही रहेगी। यह समझदारी उत्पन्न करने के लिए हम अपनी सूक्ष्मीकरण द्वारा उपार्जित शक्ति का उपयोग करेंगे, दोनों को पीछे हटने के लिए दबाव डालेंगे और यह विश्वास किसी न किसी प्रकार करा सकेंगे कि आक्रमण की तुलना में पीछे हटने में बुद्धिमत्ता है। इस दबाव से आज का आक्रोश ठंडा होगा, समझदारी और जिम्मेदारी का नया दौर चलेगा। गर्म युद्ध शीत युद्ध में बदलेंगे और शीत युद्ध उस स्थिति में जा पहुंचेंगे जिसे लंबे समय के लिए, सदा के लिए युद्ध विराम के रूप में देखा जा सके। समाधान कैसे होगा, इस संदर्भ में ये पंक्तियां जुलाई 84 तक की अखंड ज्योति में छपी थी। उस समय कोई उस प्रकार होने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, परंतु 1987 में रसिया के राष्ट्रपति श्री गोर्बाचोव की एकतरफा पहल के बाद वैसा ही हुआ जैसा युगऋषि ने घोषित किया था। 5. मूर्धन्यों को झकझोरने वाला भागीरथ पुरुषार्थ। धरती पर रहने वाले मनुष्यों में से 3/4 संख्या बालकों, असमर्थों एवं न कमाने वालों की है। इनके अतिरिक्त जो भी बचते हैं उनमें बड़ा भाग उनका होता है जिनकी दुनिया पेट प्रजनन तक सीमित है। दिन गुजारने के अतिरिक्त न उनकी कोई महत्वाकांक्षा है न क्षमता। धरती अधिकांश इन्हीं के भार से लदी है, जिसमें दूरदर्शी विवेकशीलता की मात्रा विद्यमान है। वस्तुतः उन्हीं को मनुष्य कहना सार्थक है। वे अपनी समाज की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करने और उनके समाधान खोजने में सक्षम भी हैं। हमारी भावी क्षमता इसी समुदाय के लिए कार्यरत रहेगी।